الله أكبر. تو یہ آیات امید افزابی ہیں اور انسان کے لیے حوصلہ دینے کے لیے بہت کافی ہیں کہ انسان ان اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانتے ہوئے اور اس کی طرف پلٹ آئے اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بہت سخت ہے جو قابل برداشت نہیں ہے، اور جو توبہ ہے وہ میری نجات ہے، اسی میں میری نجات ہے کہ میں اللہ کی طرف پلٹ ہوں. اور توبہ کا الٹ کیا ہے؟ تکبر، کہ انسان یہ سوچے کہ نہیں مجھے نہیں ضرورت ہے توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی، میں کس بات پہ معافی مانگوں، میں نے تو کبھی کسی سے معافی ہی نہیں مانگی. اللہ اکبر. تو لا الہ الا ہو تو پھر الہ وہی ہے، تو پھر ماننی بھی اسی کی ہے. الہ وہی ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں سب سے اوپر ہوتا ہے، اور پلٹنا بھی اس کی طرف ہے. یعنی جاؤ گے کہاں اگر نہیں بھی توبہ کرتے، تو کدھر جاؤ گے؟ دیکھے نا انسان، اللہ اکبر، قیامت کے دن کہے گا اللہ، سورہ قیامہ میں آتا ہے، کہے گا این المفر، کہیں بھاگنے کی جگہ ہے کہ میں بھاگ کے چلا جاؤں، کہیں چھپ جاؤں، کہیں جا کے میں پناہ لے لوں، کہیں میں فرار ہو جاؤں، کوئی جگہ ہے بھاگنے کی. اس دن اللہ کی طرف ہی جانا ہوگا. تو الیہ المصیر، آئے بھی اس کی طرف، واپس بھی اس کی طرف جانا ہے. بیچ میں یہ چھوٹا سا ایک وقفہ ہے، یہی ہم سے سنبھل نہیں رہا. ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے، جدال، جنگ و جدل جیسے ہوتا ہے، جدال کرنا، بحثیں کرنا، جھگڑے کرنا، اور جدال میں خاص طور پہ ایسی گفتگو جس میں دونوں فریق ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جدال ایک حق کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ایک ناحق جدال بھی ہوتا ہے، باطل کا جدال. باطل کا جدال کیسے ہوتا ہے؟ کہ انسان اڑ جائے اپنی بات پر اور بس بحث پہ بحث کیے جائے. اس کا کام یہ کہ بس میں نے، چاہے میری بات صحیح نہیں بھی ہے، میں نے مان کے نہیں دینا. غلط بات پہ انسان اڑا رہے، سننا ہی نہ چاہے، بس بحث برائے بحث. تو یہ باطل جدال ہے. اور حق سے جدال کیا ہے؟ کہ جہاں جدال کی ضرورت ہو انسان کو بحث بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی، لیکن آسان طریقے سے کرے، نہ اس کے اندر بدتمیزی، نہ اس میں چیخنا چلانا، نہ اس میں دوسرے کو سنب کرنا کہ بس دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر دوں کسی طرح، یا دوسرے کے اوپر ہنسنا شروع کر دینا، یا دوسرے کو اس طرح کرنا، ایسی کوئی چیز نہ ہو، بلکہ صرف حق کو بیان کر دینا اور حق کو ثابت کرنے کی دلائل کے ساتھ کوشش ہو، تو وہ حق کے ساتھ جدال ہے. یہ نہیں ہے کہ بس دوسرے سے ویسے ہی بیر ہے اور آپ بس اس کی بات کو نگیٹ کرنا ہے، تو جھگڑے پہ جھگڑا کر رہے ہیں اور بحث پہ بحث کر رہے ہیں کہ اب تو اچھا موقع آیا کہ میں اس کو نیچا کروں، اب اچھا موقع آیا کہ میں اسے اپنے پرانے بدلے چکا ہوں، پہلے ہی مجھے اچھا نہیں لگتا، تو چلو جی اب میں اس کے ساتھ جھگڑے کر کر کے تو اس کو لوگوں میں دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی اس کی بات کتنی غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اسی سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات میں، یعنی قرآن کریم کے اندر، جدال کرنا کفر ہے، کیونکہ یہاں پہ کہہ دیا گیا کافر صرف جدال کرتے ہیں اللہ کی آیات میں. یعنی ایک تو جھگڑے ہوتے ہیں نا، عمومی جھگڑے، وہ بھی ناپسندیدہ ہیں کہ انسان، بچے ماں باپ کے ساتھ بحثیں کر رہے ہیں، میاں بیوی آپس کے اندر بحثوں پہ بحثیں کرنے لگے ہوئے ہیں، اور بس ہر وقت ایک جھگڑے کی کیفیت رہتی ہے، یہ بھی بری بات ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں حدیث میں آتا ہے، سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے، یعنی بس اس کو کام ہی ہے چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کے لڑائیاں شروع کر دینا، بس اس لیے کہ اب کون میرا مقابلہ کرے گا. اس کی زبان سے تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، کوئی جیت نہیں سکتا، اس کو پتا ہے کہ میری تو زبان ہی ایسی ہے، اتنی لمبی ہے کہ کوئی کہاں ٹھہر سکتا ہے. ایسے لوگوں کو پتا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ آگے بڑھ کے نا ایسی جھگڑے کھڑے کر دیتے ہیں. अच्छा अब छोटी सी बात होगी उसके ऊपर भी तूफान खड़ा कर देंगे, जरा जरा सी बात को लेके बैठ जाएंगे। ये बहुत ही बुरी चीज है, इसलिए क्योंकि आपसे सबने क्या फरमाया, सबसे नापसंदीदा है अल्लाह के नजदीक। क्या हम होना चाहते हैं सबसे नापसंदीदा अल्लाह के नजदीक? क्या हम हर बात पे झगड़े शुरू कर दें, लड़ाइयां? उससे भी लड़ाई ली हुई है, उससे भी लड़ाई ली हुई है, उससे भी बात नहीं करते। या कोई बेचारे लोग तो माफिया मांगते हैं कि अल्लाह इनके साथ हमने लड़ाई लेनी है, वो सिर्फ इसलिए हमसे मिलते हो कि भाई अगर ये हमसे लड़ने लग गए तो फिर हम इनका कहाँ मुकाबला करेंगे। वो डरते हैं, और ऐसे लोगों को पता होता है कि लोग मुझसे डरते हैं। मैं ऐसी सुनाऊंगी ना, ऐसी इसको करूंगी कि बस ये याद रखेगी सारी दिन। तो ये कोई बड़ी होशियारी की बात नहीं, बड़े फखर की बात नहीं, शर्म आनी चाहिए इसके ऊपर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतने झगड़ाते होते हैं, लोग उनसे डरते हैं। लोग इसलिए सिर्फ उनसे सलाम दुआ करते हैं कि भाई इनके शर से हम महफूज रहे। तो ये चीज जो है अल्लाह की नजरों से बंदे को गिरा देती है। इसलिए इंसान को देखना चाहिए कि कहीं मैं तो इनमें नहीं हूं। तो झगड़ा वैसे सही नहीं है। वैसे भी झगड़े के बारे में आपसे सलम ने फरमाया कि कोई कौम हिदायत पाने के बाद गुमराह नहीं होती जब तक इनमें झगड़ा करने वाले ना हो। यानी इसका मतलब है कि हिदायत से भी फेर देते हैं ये झगड़े। आपको पता है लैलतुल कदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने आ रहे थे वो रात के बारे में, झगड़ा ही था ना लोगों का, जिनकी वजह से दो लोगों का झगड़ा कर रहे थे, जिनकी वजह से आपको भुला दी गई, यानी खैर से भी महरूम हो गए। तो देखिए जरा, इंसान को खैर से भी झगड़ा महरूम कर देता है। और घरों के अंदर अगर झगड़े हो रहे हो, लड़ाइयां हो रही हो, हर वक्त लड़ाइयां हो रही हैं, हर वक्त एक बहस मुबाहसे की कैफियत है, जब देखोगे कोई चीख रहा है तो वहां भी क्या खैर आएगी बताएं? जहां पे झगड़े होते हैं वहां से बरकत उठ जाती है। आप देख लें ऐसे खानदानों में, ऐसे घरों के अंदर बरकत नहीं होती जहां पे झगड़े होते। तो अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है, ये समझ लें बस। जब आप नेक्स्ट टाइम झगड़ा करने का शौक हो कि आज तो मैं बस आस्तीनें चढ़ा लेती हूँ और अब बस आज नहीं मैंने छोड़ना, तो उस वक्त सोच लें अल्लाह ताला के यहाँ सख्त नापसंदीदा है, सबसे ज्यादा बल्कि नापसंदीदा जो सख्त झगड़ालू तो। और जहां पे आया अल्लाह की आयात में झगड़ा करना, अल्लाह की आयात में झगड़ा कैसे होता है? अल्लाह की आयात में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो झगड़ने की हो, लेकिन कुछ लोग फिर भी कोई पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उसके ऊपर बहसें शुरू कर देते हैं। ये क्यों ऐसे, यहाँ पे क्यों ये लिखा हुआ है, औरत की गवाही का ये क्यों कहा गया है कि उसकी गवाही इतनी होगी, विरासत में उसका क्यों काम है, ये देखो दो दो बीवियां तीन तीन चार चार कर ले आदमी, ये क्या बात हुई, लौंडियों का यहाँ पे क्यों है, ये क्यों है, इतने झगड़े इतने झगड़े। आप देख लेना कितने, ये तो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल्स थोड़ी सी दी है, अदरवाइज काश मजलिसों में आप बैठ जाए, आप हैरान होते हैं अल्लाह ये कैसे मुसलमान है जो अपने कुरान की बातों के ऊपर झगड़ने लगे और प्रूव कर रहे हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं ना बस वही सही है, अजाबे कब्र तो है ही नहीं, जितना मर्जी सबूत देते जाओ कुरान से लाकर नहीं, उसको मानना ही नहीं। तो नहीं झगड़ा करते अल्लाह की आयात में, मगर काफिर ही करते हैं, जो यानी काफिर का ये काम करता है। काफिर भी दो तरह के होते हैं ना, एक तो वो काफिर जिनको हम काफिर कहते हैं, एक वो काफिर भी होते हैं जो कुफराने नेमत करते हैं, अल्लाह के इतने एहसानात हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन उनको अल्लाह के एहसानात याद नहीं है, अल्लाह की दी हुई नेमतों को दिन रात इस्तेमाल करते हैं मगर एहसास नहीं है, वो भी झगड़ते हैं। तो मोमिन का क्या तरीका होता है? वो तो अल्लाह की आयात पढ़ के झगड़ता नहीं है, इनमें से बहसे नहीं निकाल लेता। हाँ ठीक है, कोई चीज नहीं समझ आई तो आप सवाल जरूर कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन वैसे करने लगना ये काम मोमिन का नहीं होता। मोमिन कहता है समयना वाता, मैंने सुन लिया बस, मैंने मानी, मुझे नहीं इस चीज से कोई फर्क पड़ता। नहीं फिर रोजे इतने क्यों रखने को कहा गया, इसके लिए ये क्यों हुक्म दिया गया, ऐसा क्यों कहा गया, अजीब ही मुझे तो समझ ही नहीं आती कि ऐसे सवालात का भी क्या जवाब दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान में झगड़ा मत करो क्योंकि इसमें झगड़ा करना कुफर है। वैसे तो दीन के किसी भी मामले में झगड़ना नहीं चाहिए। और जो दीन के इल्म हदीस में आता है ना, जो दीन का इल्म इसलिए हासिल करता है कि बेवकूफ लोगों से बहसें करें, बस बहस करना, मैं जरा पढ़ूं और फिर मैं ना जाऊंगी वहां पे और मैं जरा उनको बताऊंगी, मैं उनके साथ बहस कर सकूं, मैं भी उनको जवाब दूं, या उलमा के मुकाबले में फखर का इजहार करें, अपने से बड़े आलिम बैठे हुए लेकिन इन्होंने ज्यादा तकरीरें कर करके बताना कि मेरे पास बहुत इल्म है, फखर के साथ। भाई आपसे बड़ा आलिम बैठा हुआ तो आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए ना, कि फखर के इजहार करते हुए आगे बढ़ बढ़ के बातें करें, इसलिए वो इल्म लेते हैं कि जरा मैं इनको बताऊं कि मैं भी बहुत इल्म वाली हूँ, यहाँ लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने के लिए। यानी लोग बैठे हैं तो भाई मैं ऐसी ऐसी बातें करूं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेकर आऊं, लोगों की सारी अटेंशन मेरी तरफ हो जाए, लोग मुझे बड़ी चीज समझने शुरू हो जाए ना, तवज्जो हासिल कर लूं मैं सबकी। तो फरमाया जो इन तीन वजूहात की बिना पर इल्म हासिल करेगा ना, वो जहन्नुम में जाएगा। मैं सोच रही इल्म कितनी कितना इसका लेना कितना मुकद्दस काम है, कितनी नेकी का काम है, इबादत है, और ऐसे लोगों के लिए ये अजाब है, क्योंकि नीयत इनकी ये है। फला यगरुर का तकल्लुबुहुम फिल बिलाद, तो देखो तुम्हें इनकी चलत फिरत धोखे में ना डाल दे, ये इनका चलना फिरना मुल्कों में, उस जमाने में ले तो कुरैश इतना कुछ करके, कुफर करके, बातें सुना के और तकजीब करके रसूल की, फिर भी बड़े फ्लरिश कर रहे थे, तिजारतें भी उनकी बड़ी अच्छी चल रही थी, माल भी उनके पास था, घर बार भी उनके बड़े अच्छे थे, कुछ हो भी नहीं रहा था उनको। तो कभी इंसान के दिल में ख्याल आता है ना, हाय ये इतना ऐसे कर भी रहे हैं, फिर देखो जरा इनको, सब इनका ठीक ही चल रहा है, इनको तो कुछ भी नहीं हुआ, दौलत भी इनके पास है, बड़े बड़े ओहदे भी इनके पास है, इनकी से भी है सोसाइटी में, इतने बड़े सरदार या इतने बड़े मिनिस्टर भी हैं, तो पता नहीं यही फिर सही होंगे। नहीं, कभी धोखे में ना आना, ला यगुरुन्ना का तकल्लुब अल्लदीना कफरू फिल बिलाद मताउन कलील सुम्मा वाहु जहन्नम, देखो तुम्हें कहीं धोखे में ना डाल दे, इनकी ये चकाचौंध दुनिया की, इनकी ये सब चीजें, इनके ये ओहदे, इनके ये माल, इनकी ये दुनिया के अंदर इतनी पजीराई, इनकी शोहरतें, इनकी वाह वाह जो हो रही है, ये तुम्हें कहीं धोखे में ना डाल दे, सारी दुनिया अगर इनके साथ मिल गई है तो ये भी कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे, कि हो सकता है यही सही। नहीं, इनका तो ठिकाना जहन्नम है, मताउन कलील है, ये बहुत थोड़ा। सोच लेना आप सरसर ने फरमाया कि जहन्नुम मुझे दिखाई दे और मैंने इससे ज्यादा है बदनाक मंजर नहीं कोई देखा, इतनी जहन्नुम खौफनाक चीज है, फरिश्ते भी उसको देख के, वो फरिश्ते जो जहन्नुम के ऊपर दारोगा है वो भी कभी हंसे नहीं है, अभी उसके अंदर कोई जल नहीं रहा लेकिन सिर्फ उसकी आग को देखे, आप सरसर ने मेराज पे उनको देखा था ना, कभी वो हंसे नहीं, दुनिया की आग उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ठंडी करके दुनिया में इससे भी 70 गुना ज्यादा है वो। अब अंदाजा लगाएं उस आग का क्या हाल होगा, जब दुनिया की हाल आग ही ऐसी है कि अल्लाह ना करे कोई इंसान उसके अंदर जल जाए तो उसका हाल क्या बनता है, तो वो जहन्नम की आग कैसी होगी जिससे ये आग पनाह मांगे, ये आग पनाह मांगती उस आग से, तो वो आग कैसी होगी जिस ने दुनिया में सारी जिंदगी ऐश भी कर लिया, सारी जिंदगी जुल्म किया, मनमानियां की, जो भी उसका दिल आया किया, और उसके पास बहुत दौलत थी, बड़ी बादशाह थी, सब कुछ था, फिर भी अगर उसका अंजाम जहन्नम हो गया तो एक गोता आने पे ही कह देगा हाय मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैंने तो कभी कुछ सुख चैन देखा ही नहीं, एक गोते पे क्या देगा, और उसके बारे में क्या ख्याल है जिसने रहना ही जहन्नम में। तो आज भी दुनिया के अंदर आप जिनको देखते हैं ना, ये इनको तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो इतना जुल्म भी करते हैं, ये तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये तो अल्लाह के कानून को ललकार रहे हैं, अल्लाह की आयात को मजाक इन्होंने बना लिया, ये क्या क्या कर रहे हैं, इनको तो खुली छुट्टी मिली हुई है, ये तो इतनी तरक्कियां भी कर रहे हैं, या ये तो बुत परस्त है, और देखो दुनिया में इनके कितने वाह वाह हो रही है, इनका डंका बज रहा है, ये कितने ऊपर जा रहे हैं, वो कभी धोखे में ना आए, जिसका ठिकाना बाद में जहन्नुम है। अगर ये जहन्नुम दिखा दी जाए किसी को तो वो तो फिर कहेगा वाकई तुम हमें जितना मर्जी ऐश कर लो, फिर भी तुम खसारे में ही हो, वो विनर नहीं है। कभी ना सोचे उनको कि ये जीत गए, वो जीते नहीं है, वो तो हारे में है। फिर तो इंसान उनके ऊपर अफसोस ही करेगा। अब वो यहाँ पे आप उनको, अगर आपके जहन में वाकई जहन्नुम का तो जरा सा भी अंदाजा है तो आप अफसोस ही करेंगे कि क्या ये इतने फल फूल रहे हैं जिसका अंजाम जहन्नुम हो, उसका क्या फायदा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो इनका शहरों में घूमना फिरना, इनकी मालो दौलत में इनका खेलना और इनके ऊपर कोई आफत ना पड़ना, ये कहीं तुम्हें कभी शक में ना डाल दे। और ये का की जमीर जो आई है ना, यगरुर का, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी है और आपको बता के तमाम मोमिनों की तरफ है, क्योंकि इंसान के जहन में कभी ये बात आ सकती है। कज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिं वल अहज़ाबु मिन बादिहिम, तो अल्लाह की आयात में झगड़ने वाले जो हैं या अल्लाह की आयात को रद्द करने वाले जो हैं, वो पिछली कौमों का अंजाम नहीं देखते? ये जो आज इतने उछल उछल के घूम रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, इनके पास मालो दौलत की रेल पेल है। और आप देखते हैं ना, जिनके पास मालो दौलत ज्यादा होता है, बातें ही उनको ही ज्यादा बनानी आती हैं। अफसोस का मकाम है, जितने ज्यादा जिसको आप कहेंगे तायुशात में पड़े हुए बहुत बड़े माल वाले दौलत वाले, आप देखेंगे उतने ही ज्यादा इल्ला माशाल्लाह उतने ही ज्यादा दीन से दूर होते हैं। एक बंदा है, आप कॉमनली देखा होगा, बड़ा घर है, गाड़ियों आगे पीछे नौकर चाकर, खातून है, बेगम साहिबा, तो ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड चीजों के अंदर लदी नहीं है, और मेकअप यहाँ से है, और मेरे हेयर ड्रेसर फलां है, और ये कपड़े फलां डिजाइनर के, और पर्स फलां का है, और जूता फलां का है, और ये है। उसके बाद उनके सामने अल्लाह की बात करें तो समझ में आता है उनको? कुछ नहीं समझ आती, सर से ऊपर से गुजर जाती है। बल्कि लोग तो डरते ही हैं उनके सामने कोई अल्लाह रसूल की बात करने में, इनके सामने क्या करें, दुपट्टा तक गले के अंदर नहीं है और पूरी सजी धजी घूम रही है। अब इंसान कहता है कि कैसे इनको अल्लाह की बात बताया बताई जाए, वो उनसे मुतासिर हो जाता है कि या अल्लाह इनके पास तो इतना कुछ है, इंप्रेस ऐसे हो जाते हैं हम। और उनसे बात करें तो फिर वो अल्लाह की बात को वो कोई अहमियत ही नहीं देते, ऐसे कि जैसे उनको अल्लाह ताला की क्या जरूरत है, हमारे पास सब कुछ है, हमें क्या जरूरत है। तो जितनी ज्यादा एलिटिस्ट होते हैं उतनी ही ज्यादा अक्सरियत अल्लाह के कलाम से दीन से दूर होती है। तो उनको बताया गया, पिछली कौमों को देखा नहीं इन्होंने, वो भी दुनिया के अंदर बड़े ही जबरदस्त थे, उनका अंजाम नहीं याद है? क्या थी कौमे नूह, और क्या उनके बाद के भी जो, यानी कौमे नूह तो सबसे पहले रसूल तो नूह अलैहि सलाम थे ना, उनके बाद आद आए, समूद आए, आपने पढ़े उनके किस्से? वो तो अपने आप को इतनी बड़ी चीजें समझते थे कि हम जैसा तो कोई है ही नहीं है, फिरौन जैसा, कहते थे हम कोई और ही चीज है, रब हूं मैं तो। आद कहते थे हमारे जैसा ही कोई नहीं दुनिया में पैदा हुआ। फिर क्या हुआ उनके साथ? सोचते नहीं है ये लोग, और आज भी हम सोचते नहीं है जब हम इम्प्रेस हो जाते हैं। वह हम मत कुल्लु उम्मत इम्मी रसूल है, और इरादा किया हर उम्मत ने अपने रसूल के साथ, लिया खुजू, कि वो पकड़ लें उसको, पकड़ के क्या करें, या तो कत्ल कर दे या फिर इसको कहीं कैद कर दे। तो हर एक ने ये कोशिश की, और देखे कुरैश ने भी कोशिश की थी, तो बाज इस कोशिश में कामयाब भी हो गए, उन्होंने रसूलों को कत्ल भी कर दिया था। वजादलू बिल बातिल लियुदहिदू बिल हक फअख़ज़तहुम, वअख़ज़तुहुम तो मैंने पकड़ लिया उनको। उन्होंने बातिल के साथ झगड़ा किया ताकि हक को नीचा दिखाएं। उनके पास हक तो था नहीं, लेकिन उनके पास जो बातिल था ना, उसी से उन्होंने इतना प्रोपोगंडा किया कि इससे हक को फिसला दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने उनको पकड़ लिया अजाब से। अब आप देखें, पैगंबरों के जब दावत आई तो लोगों ने क्या किया, मुखालफत की और उस पे अड़ गए सिर्फ अपने मफादात के पीछे, या इसलिए कि जो है अगर हम मान गए तो अवामुन नाज के अंदर हमारा क्या मकाम रहेगा, फिर हमारी तो कुछ भी नहीं चलेगी, हमारी सरदारी का क्या बनेगा। इसलिए वो लोगों में शकूको शुबहात भी पैदा करते थे, खुद भी हक को कबूल नहीं करते थे। हमने कबूल कर लिया तो सारी कौम ही कबूल कर लेगी, और बातिल पे डटे रहे। और अल्लाह ताला ने जब उनको पकड़ा तो क्या, फकैफा काना इकाब, तो तुम देखते नहीं कि मेरी सजा कैसी है। अल्लाह ताला फरमाता है फिर तुमने उससे सबक नहीं लिया कि मैंने कैसे उनको पकड़ा। तो अल्लाह ताला फरमाता है ना कि नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम व अन्न अजाबा वल अजाबुल अलीम, कि मेरे बंदों को है नबी आप बता दें कि ठीक है मैं गफूर रहीम भी हूं, लेकिन मेरा अजाब भी फिर बड़ा दर्दनाक अजाब है। जब अजाब आता है ना, तो अल्लाह के अजाब को ना ललकारो, ना दावत दो, या तो दुनिया में ही अजाब आ जाएगा, या फिर दुनिया में भी आएगा और आखरत में भी आएगा, या फिर आखरत में सिर्फ आएगा, तो कुछ तो जरूर होगा। वकज़ालिका हक्कत कलिमतु रब्बिका अलल लदीना कफरू अन्नहुम अस्हाबुन नार, और अल्लाह की बात सच हो गई इन लोगों के बारे में जिन्होंने कुफर किया कि ये आग वाले होंगे। ये अल्लाह की बात सच हो गई, यानी अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया था, ये वैसा ही हुआ जैसा अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखा था। अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बिना पर ये पहले लिख दिया हुआ कि कौन है जो आग का साथी बनेगा, और वो वैसा ही हुआ। एक तो ये भी माना है, और दूसरे ये कि जो कुफर करेंगे वो आग में जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने ये बात पूरी कर दी, सच हो गई ये बात। अल्लाह ताला इन आयात से हमें सही सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.